ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮೇ ಕುಜ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮೋ ಕಿ ವಿಶೇಷ ಭೂಮಿಕಾ ರಹಿ ಹೈ, ಜೋ ಯಜ್ಞ ಕಿ ಆಧಾರಶಿಲಾ, ಯಜ್ಞ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಲ ಕಿ ಜೋ ಆದಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಂ, ಜಿನ್ಹೊನೆ ಯಜ್ಞ ಕೋ ಇತನಾ ಮಜಬೂತ ಬನಾಯಾ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮೋ ಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಕೋ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಪ್ರತಿಭಾಂ ಸೆ ತರಾಶಾ ಔರ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನ ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನಾಯಾ, ಆದಿ ಪಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಸೆ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೆ ಲೇಕರ್ ತೋ ದಾದಿಯಾ ದೀದಿಯಾ ಜಿನ್ಕಾ ಭಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಾನ ಹೈ, ಜಿನ್ಹೊನೆ ಅಪನೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಸೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೋ ಕೆ ಜೀವನ ಕೋ ಭಿ ಮಹಾನ್ ಬನಾ ದಿಯಾ. ಉನ್ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿಯೋ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಹೈ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಮನಮೋಹಿನಿ ಜೀ, ಜಿನ್ಕಾ ಆನೆ ವಾಲಿ ಸಂಡೇ ಮೇ ಭಿ ಮುರಳಿ ಮೇ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಜಿಕ್ರ ಕಿಯಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ್ ದೇಖೆಂಗೆ ಕಿ ಉನ್ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿಯೋ ಕೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಸೆ ಕೈಸೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೋ ಕಾ ಜೀವನ ಮಹಾನ್ ಬನಾ, ಔರ್ ಉನ್ ಮಹಾನತಾಓ ಕೋ ಹಮೇ ಅಪನೆ ಜೀವನ ಮೇ ಕೈಸೆ ಧಾರಣ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಉನ್ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮೋ ನೆ ಅಪನೆ ಚಾಲ್ ಚಲನ್ ಸೆ ಏಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸೆ ಹಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೋ ಕೋ ಇತನಾ ಕುಛ ಸಿಖಾ ದಿಯಾ ಕಿ ಉನ್ ಸೀಖನೆ ವಾಲಿ ಆತ್ಮೋ ಕೋ ಭಿ ಇತನಿ ಮೆಹನತ್ ನಹೀಂ ಲಗಿ ಸೀಖನೆ ಮೇ. ಬೋಲ್ ಚಾಲ್ ಸೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕತಾ ಸೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆನೆ ಸೆ ಉನ್ಹೊನೆ ದೀದಿ ಸೆ ಬಹುತ್ ಕುಛ ಸೀಖ ಲಿಯಾ, ಔರ್ ಜೀವನ ಮೇ ಕೈಸೆ ಅನೇಕ ಬಾರ ಉನ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆತೆ ಹುಯೆ ಗಂಭೀರತಾ ಔರ್ ರಮಣೀಕತಾ ಕಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ನೇಹ ಔರ್ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಖಕರ್ ಕೈಸೆ ಆತ್ಮಾ ಮೇ ಏಕ ನಯಿ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಸಂಚಾರ ಕರ ದಿಯಾ, ಕೈಸೆ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೋ ಏಕ ಖುಷ್ಬುದಾರ್ ಫೂಲ್ ಕಿ ತರಹ ಬನಾ ದಿಯಾ, ಏಕ ಅಲೌಕಿಕ ಮಾಂಗ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಸಖಿ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್, ಔರ್ ಕೈಸೆ ಉನ್ ಆತ್ಮಾ ನೆ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಏಕ ಬಾರ್ ಪುರಾನಿ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಆಕರ್ಷಣ ಕೋ ಛೋಡಾ ತೋ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ. ಜೈಸೆ ಆಜ್ ಭಿ ಬಾಬಾ ನೆ ಮುರಳಿ ಮೇ ಕಹಾ ಕಿ ಪುರಾನಿ ದುನಿಯಾ ಸೆ ಮುಖ ಏಕದಮ್ ಮೋಡ್ ಲೆನಾ ಹೈ. ತೋ ಜೋ ಯಜ್ಞ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಲ ಕಿ ಆತ್ಮಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಹಮ್ ಜೀವನ ಮೇ ಅಗರ್ ಝಾಂಕತೆ ಹೈ ದೇಖತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸೆ ಕೈಸೆ ಏಕ ಧಕ್ ಸೆ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ ತೋ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ, ಫಿರ್ ನಾ ಉನ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಜಿಕರ್ ನಹೀಂ, ಕೋಯಿ ಮನ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೋಯಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಹೀಂ. ಉನ್ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಕೈಸೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾಓ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನೆ ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನಾ ಗ್ಯಾ. ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಕುಛ ಏಕ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರ ಹೈ ದೀದಿ ಮನಮೋಹಿನಿ ಜೀ ಕೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಪರ್ ಕಿ ಕೈಸೆ ಕೈಸೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೋ ಸಹಜ ರೂಪ ಸೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾಓ ಕೆ ಆಗೆ ರಖಾ ತಾಕಿ ವೋ ಬಹುತ್ ಸರಳ ತರೀಕೆ ಸೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಗುಣೋ ಕೋ ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಯೋ ಕೋ ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಅಪನೆ ಜೀವನ ಮೇ ಅಮಲ್ ಮೇ ಕೈಸೆ ಲಾ ಸಕೆ. ತೋ ಕುಛ ಏಕ ಪ್ರಶ್ನ ಹೈ. ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ನೆ ದೀದಿ ಜೀ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾಓ ಕೋ ತೋ ಪಡಾ ಹೀ ಹೋಗಾ, ಜಾನತೆ ಭಿ ಹೋಂಗೆ, ಜೋ ನಹೀಂ ಜಾನತೆ ತೋ ಆಜ್ ಸೆ ಜಾನ್ ಲೇಂಗೆ. ಹರೇಕ ಪೂರ್ವಜ ಕಾ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಹಮಕೋ ಇತಿಹಾಸ ಜೋ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ ಗಾಥಾ ಹೈ ಉಸ್ಸೆ ಪರಿಚಿತ ಹೋನಾ ಜರೂರಿ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜೋ ಹಮ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಪಡತೆ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಅಮಲ್ ಮೇ ಲಾನಾ ಬಹುತ್ ಸಹಜ ಹೋತಾ ಹೈ. ಜಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ವೋ ನಿಕಲೇ ಹೈ ಉಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸೆ ನಿಕಲ್ನಾ ಫಿರ್ ಹಮೇ ಭಿ ಸಹಜ ಲಗತಾ ಹೈ ಕಿ ಕೈಸೆ ಕೈಸೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ವಿಕಟತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಮೇ ಭಿ ಉನ್ಹೊನೆ ಸಹಜ ರೂಪ ಸೆ ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ ಮೇ ಉನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ಸಮಝಕರ್ ಖೇಲ್ ಸಮಝಕರ್ ಆಗೇ ಕೈಸೆ ಬಡತೆ ಗೇ. ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಅಭಿ ದೀದಿ ಜೀ ಕೆ ಹಮ್ ಕುಛ ವಿಶೇಷತಾ ಹೈ ಜಿನ್ಕೆ ಊಪರ್ 25 ಪ್ರಶ್ನ ನಿಕಾಲೆ ಗೇ ಹೈ. ತೋ ಇನ್ ಪರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಹಮ್ ವಿಶೇಷತಾಓ ಕೋ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಹಮ್ ಸಬ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಪಹಲೆ ತೋ ಯೇ ಬತಾಯಿಯೆ ಕಿ ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ನೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಯಾ ದೀದಿ ಜೀ ಕಿ ವಿಶೇಷತಾಓ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪಡಾ ಹೈ, ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಜಾನತೆ ಹೈ? ಕೋಯಿ ಕೋಯಿ ತೋ ಹೈ ಜೋ ದೀದಿ ಜೀ ಕೆ ಇಸ್ಮೇ ಕೆ ಹೈ, ಔರ್ ಜೋ ನಹೀಂ ಜಾನತೆ ಹೈ ತೋ ಅಭಿ ಆಜ್ ಸೆ ಜಾನೆಂಗೆ ಔರ್ ಪಡೆಂಗೆ ಇಸ್ಕೋ ಭಿ. ಆನೆ ವಾಲೆ ಸಂಡೇ ಕೆ ಮುರಳಿ ಹೈ ಔರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಭಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ ದೇಂಗೆ, ತೋ ಆಪ್ ಉಸ್ಕೋ ಭಿ ಗಹರಾಯಿ ಸೆ ಪಡ್ ಸಕತೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೈ. तो कुछ एक प्रश्नों का तो कुछ एक भाइयों को ही पता होगा। जैसे प्रश्न है, मधुबन में दीदी ने निरंतर कब से रहना आरंभ किया था? कब से रहना आरंभ किया था चंद्रशेखर भाई जी? है हाँ चिमन भाई जी। लेकिन निरंतर कब रहना शुरू किया था? 1965 से, जब मम्मा ने अपने भौतिक देह का त्याग किया था तो बाबा ने दीदी को मधुबन में बुला लिया था, फिर दीदी दादी साथ मिलकर सेवा करने लगे। तो 1965 में दीदी मधुबन में रहना आरंभ किया निरंतर। उससे पहले दीदी इलाहाबाद या दूसरे दूसरे स्थानों पर सेवा करने के लिए जाते थे, लेकिन बाबा ने फिर 1965 में दीदी को परमानेंट इधर बुला लिया। दिल्ली में रहे, इलाहाबाद में रहे। दीदी जब बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ के हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी तो बाबा दीदी से क्या कहते थे? दीदी जब बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ के हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने जाते थे तो बाबा दीदी को क्या कहते थे? सारा कल पैसे साथ साथ रहेंगे और ये भी ठीक है, बालक सुमालक और हाँ वो ये कहा था, सारे कल्प में तो नहीं बोला लेकिन आपकी उससे ज्यादा ऊंची सोच होगी। ठीक है, तो बाबा कहते थे कि अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़ेगा, भविष्य में श्री कृष्ण दीदी की उंगली पकड़ेगा। ये उनकी आपस में चिटचैट चलती रहती थी। वो तो बोला नहीं है लेकिन उंगली किसी भी रूप में पकड़ सकते हैं। दीदी जी के पार्थिव देह को अंतिम विदाई कब दी गई थी? लेकिन कौन सी तारीख? 30 जुलाई 30 जुलाई 1983 में। और दीदी जी ने देह का त्याग कब किया था? 28 जुलाई 1983। कहां पर किया था? मुंबई में। और उसका कारण क्या रहा था? उनका इलाज कौन से डॉक्टर ने किया था और उसके बारे में क्या चर्चा हुई थी? दीदी जी दूसरों में पढ़ाई का शौक कैसे पैदा करती थी? प्रश्न पूछकर और और हाँ, तो अनेक प्रकार के तरीके रहे, एक ही चाल पर नहीं बल्कि मुरली से प्रश्न पूछकर, गीत कविताएं शेर व शायरी, तो हर एक की विशेषता देखकर दीदी उनमें उमंग सा भरती थी, पढ़ाई के प्रति शौक पैदा करती थी। तो और पढ़ाई के प्रति शौक पैदा करने भी बहुत अच्छी सेवा है। दीदी जब योग कराती थी तो उनको देखने से क्या अनुभव होता था? करंट आ रहा है, शक्ति आ रही है। आंखों से क्या दिखाई देता था? लाइट। और किसकी लाइट? जादू की डिब्बी और बल्ब। और क्या दिखाई देता था? कुछ साक्षात्कार होता था कईयों को? दीदी जब योग कराते थे तो उनके आंखों से बाबा दिखाई देते थे और नई राजधानी का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग दिखाई देता था, बाप दादा। डायरी की सौगात देते हुए दीदी क्या कहती थी? तो दीदी ने हर एक, देखो सौगात दे रहे हैं तो उसको केवल पकड़ा नहीं दिया, और सौगात भी विशेष वही दी जाती थी जिससे कोई कुछ सीख सके। ऐसा नहीं स्वेटर दे रहे तो वो पहन के रख दिया, उसके बारे में कुछ बोलेंगे उनको, इसके इसमें तो नहीं है। लेकिन है उसमें विशेषता कि दीदी जी ने राजू भाई जो मुरली वाले हैं उनको स्वेटर दिया था काले रंग का, तो राजू भाई ने देखा कि तो काले रंग का स्वेटर तो संकल्प चला होगा, लेकिन दीदी की परखने की शक्ति बहुत तेज थी। तो दीदी जी ने कहा तुम इसको अंदर पहन लेना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, फिर तो बाहर नहीं पहनना तुम। कि संकल्प परख लिया उनका, तो क्योंकि अगर तुम बाहर पहनेगा तो तुमको भी संकल्प चलेंगे और तुम इसको अंदर पहन लेना, तो तुमको ये संकल्प नहीं चलेगा और तेरी ठंड भी रुक जाएगी। तो और डायरी देते समय स्लोगन पढ़ाती थी और पूछते थे कि आपने इस स्लोगन से क्या सीखा है, इससे क्या प्रेरणा ली है। तो कोई भी सौगात देते उसमें शिक्षा समाई होती थी, ताकि उस शिक्षा से भी उसके अंदर एक नए विचार पैदा हों, बाबा के प्रति उसका प्यार बढ़े, स्पिरिचुअलिटी के प्रति उसके संकल्प चले। तो इस तरह से दीदी जो है वो सौगात भी देते थे, तो उसमें कोई महत्व था, उसमें भी शिक्षाएं समाई होती थी। कौन सी बातों पर दीदी तुरंत निर्णय नहीं देती थी लेती थी? हाँ, अफवाहें अर्थात किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत निर्णय नहीं देती थी। कि किसी ने अगर किसी की कंप्लेंट की है तो तुरंत निर्णय डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि उससे भी पूछते थे, या दोनों को सामने बुलाते थे, या फिर बड़े दादी से उसके बारे में डिस्कस करते थे, तो उसके बाद निर्णय देते थे, तुरंत जजमेंट नहीं करते थे। तो ये भी दीदी की एक विशेष विशेषता थी, ताकि किसी को किसी का दिल शिकस्त नहीं हो जाए कि दीदी ने उसका तो सुना ही नहीं और सीधा निर्णय दे दिया। दीदी यज्ञ वत्सों को विशेष बात किस बात की संभाल करने के लिए कहती थी? और यज्ञ वत्सों को विशेष किस बात की संभाल करने के लिए कहती थी? हाँ, विशेष है, दीदी कहते थे संघ से सदा संभाल रखना। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, अगर महान ते महान है समझदार, पहले समझदार वो बाद में सोचने का। महान से महान समझदार देखना वो तो विद्रोही है, और महान से महान वो देखना तो वो भी विद्रोही है। तो ऐसे दीदी विशेष संभाल के लिए कहते थे संघ से सदा संभाल, जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है, जिसको याद करता है, जिसके बारे में संकल्प चलता है, स्वतः ही उसके लक्षण उसमें दिखाई देने लग पड़ते हैं। तो संग से संभाल करने के लिए दीदी ने विशेष इशारा दिया सबको कि संघ से सदा संभाल रखनी है। दीदी जी कौन सी भाषा से सदा मुक्त रही? सिंधी। नहीं, ये है बोलचाल में। और हाँ, बोलचाल में कौन से भाषा या कौन से शब्दों से सदा मुक्त रही? वो वाली भाषा नहीं, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू नहीं, दूसरी भाषा, कभी कभी। हाँ, इस तरह की भाषा। और देखेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, इस तरह की कौन सा, यही भाषा है। इसमें से और कोई विशेष भाषा? मैंने किया। और मैं नहीं कर सकती, तो है तो सब ठीक। मैं और मेरेपन की भाषा से सदा मुक्त रही। मैंने किया है, मैं ही कर सकती हूं, मैं विशेष हूं, मैं मुझे निमित्त बनाया गया है, इन सब भाषाओं से दीदी सदा मुक्त रहे। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त, जैसे संडे को बाबा ने कहा ना, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो मैं और मेरेपन की भाषा से सदा दीदी मुक्त रही। दीदी मनमोहनी जी का लौकिक नाम, उनकी लौकिक माता जी का नाम गोपी और क्वीन मदर हो गया। अच्छा, उनकी लौकिक बहन का नाम शीलिंद्रा। तो बॉम्बे का गवर्नर बाबा उनको कहते थे दीदी को। किसको? नहीं, उनके माना लौकिक में क्या लगते थे, दूर की बहन, चचेरी बहन। तो ये दीदी जी के चार लोग, उनके परिवार से चार लोग थे। एक तो खुद दीदी हो गए, जिनका नाम गोपी था, उनकी मदर का नाम क्वीन मदर था, और उनकी बहन, अच्छा, तो बहन का नाम शील बहन, और चौथी जो बताया गया जो चचेरी बहन थी ब्रिज शांता, भाई का नाम मिट्ठू, वो फिर लोप हो गए, प्राय लोप। इनको देना चाहिए जस्ट लोक हॉस्पिटल के ट्रस्टी। हाँ, अर्जुन दादा भी उनके संबंध में थे, संबंधी थे। अच्छा, दीदी जी को कोई पांच विशेषताएं बताइए। वैसे तो बहुत सारी, ढेर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य पांच विशेषताएं सुनाइए। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस था, एक्यूरेट और दिनचर्या में एक्यूरेट, निर्भयता की शक्ति थी, परखने की शक्ति थी, और
स्टूडेंट लाइफ,
हाँ सबसे पहले नंबर वन स्टूडेंट, उनके कभी भी मिस नहीं हुआ। एक बार दीदी को जो पहले सवेरे तो पानी गर्म देने के लिए जाते थे भर के बाल्टियों में, तो किसने पता नहीं पानी, संजय भाई पैरे वाले जो चले गए, तो पानी लेट दिया होगा भर के अंदर, तो वो नहाने में लेट हो गए। अब नहाने में लेट हो गए तो गर्म पानी जो है थोड़ा ठंडा हो गया होगा, तो फिर वो जब तक दूसरा पानी आए तो फिर और लेट हो गए उसके कारण। तो मना दिनचर्या बाद में क्लास में 5 मिनट लेट पहुंचे उनके कारण, तो बोला मैं आपके कारण 5 मिनट लेट हो गया, आज मेरी दिनचर्या खराब होगी सारी। तो इतना विशेष अटेंशन देते थे कि दिनचर्या पर कैसे एक्यूरेट है। नंबर वन स्टूडेंट, लव और लव, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, लेट, हाँ 2 मिनट रिकॉर्ड लेट क्यों हुआ और दीदी जी कर्म करके सिखाती थी, कह के नहीं सकते, कर्म करके सिखाते थे। संपूर्ण समर्पण अर्थात लौकिक से संपूर्ण किनारा कर लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। दूसरों में उमंग सा भरने की विशेष कला थी, किसी को भी उन्होंने डिसअटेंड नहीं किया। छोटे से छोटे बच्चे भी होते थे, उनको अगर भाषण करते थे तो उनसे भी सीखते थे, उनको भी अप्रिशिएट करते थे, देखो कितना अच्छा भाषण कर रहे हैं। दीदी जी ने शिव शक्ति का बैज किसे पहनाया था आपको सारे ही पता दादी जानकी जी को शिव शक्ति का बैज पहनाया था दीदी जी ने, पूर्वज, ओ वही बैज लगाते हैं मेरे ख्याल, वो उसी के ऊपर केवल एकमात्र यज्ञ में बैज होगा जिसके ऊपर शिव शक्ति लिखा हुआ है दादी जानकी जी का। दीदी जी का कौन सा गीत फेवरेट था, अब घर जाना है। दीदी और दादी प्रकाशमणि जी के बारे में कौन सी बात प्रचलित थी, दो अंशों की जोड़ी अर्थात, हाँ दो शरीर आत्मा एक, इतने विचारों में समानता थी। यज्ञ कारोबार को करते इसमें दीदी को कौन सी स्मृति रहती थी, हैं ट्विन फिल्म, अच्छा हमारा दोनों में समानता बहुत ज्यादा, एक ने जो सोचा वो दूसरे को पता चल जाएगा, ट्विन फिल्म। चलो आप इस पर विस्तार करके सुनाना। यज्ञ कारोबार को करते समय दीदी जी को कौन सी स्मृति रहती थी, निमित्त अर्थात करावन हार बाबा करा रहा है, वही करता कराता था, तो पूरा एक बाबा के साथ की अनुभूति, कर्म के ऊपर उनका ये नहीं रहता था कि उसके प्रभाव में, बल्कि कराने वाला वो करा रहा है, हम निमित्त हैं केवल। हाँ जी वो भी आएंगे, आगे आएंगे अभी। दीदी जी की आत्मिक स्थिति का कैसा अभ्यास था, कितना पक्का उनका अभ्यास था जो अर्थात ऐसा अभ्यास पक्का था जो नजर से निहालकर हर आत्मा को तृप्त एकदम संतुष्ट कर भरपूर कर देते थे, अनुभूति होती थी उनको विशेष। दीदी कौन सी बातों से सदा मुक्त रही, एक तो ऊपर पहले बता दिया था मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही, अब यहां कौन सी बातों से सदा मुक्त रही, हाँ व्यर्थ की बातों से, पर चिंतन पर दर्शन से सदा मुक्त रही। कितनी बढ़िया शिक्षा है कि कभी भी दीदी व्यर्थ की बातों में नहीं गए, बल्कि व्यर्थ को भी समर्थ बना दिया है ना। आने वाले संडे में एक सेंटेंस है, आप ट्रस्टियों को क्या है, आदेश है निर्देश है, केवल समर्थ सोचने का ही, समर्थ सोचने की शिक्षा मिली है, केवल समर्थ ही सोचना व्यर्थ नहीं। तो दीदी जी व्यर्थ की बातों से, परचिंतन से, परदर्शन से सदा मुक्त रही। दीदी जी को जो भी बहन मिलती थी तो क्या कहती थी, तुम मेरी सखी हो, चाहे कोई छोटी बहन हो या बड़ी हो, सबका दिल जीत लेती थी। ये बहुत बड़ा विशेष गुण है, नहीं तो आय के वरदान में भी है ईर्ष्या, दिल शिकस्त, ये दूसरों की विशेषताओं को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या आती है, कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या आती है। उसका कारण भी बाबा ने बताया कि सर्व प्राप्तियों को समाया नहीं है, और समाया नहीं है तो फिर सफलता भी नहीं होती है, फिर दिल शिकस्त होते हैं, ईर्ष्या होती है, तो विशेष दीदी में विशेषता थी कि दूसरों को भी सखी, चाहे छोटी बहन है चाहे बड़ी बहन है, उनको भी सखी कह के उनसे भी सीखते थे। माना सबको इकट्ठा ही लेके चलना बहुत बड़ी बात है, ये सबका दिल जीतना। अच्छा, ये प्रश्न पहले भी आ गया। वैसे दीदी जी ने अपना भौतिक देह कब त्याग किया था? 1983 में 28 जुलाई। दीदी जी में कौन सी विशेष शक्तियां थी जिनका हर कोई जिक्र करता था? परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति। तुरंत दीदी परख लेते थे कि सामने वाला किस मानसिकता वाला है, कैसी इसकी सोच है, यज्ञ के प्रति कैसा है इसका, या संगठन के प्रति कैसी इसकी सोच है, तुरंत परख लेते थे। तो ये विशेष शक्तियां थी, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। वैसे तो दूसरी बहुत सारी शक्ति थी, निर्भयता की। दीदी डरते नहीं थे, बिल्कुल निर्भय थे एकदम। हाँ, दीदी जब दीदी आते थे तो ऐसे लगता था जैसे CID ऑफिसर आ गया, सब लोग तितर बितर हो जाते थे इधर उधर। और ऐसे बड़े दादी जी भी, उनमें भी हमने देखा कि किचन में जब जो पेशेंट किचन है तो कोई ना कोई कुछ बना रहा होता है, तो जैसे पता चल गया दीदी दादी आ रहे हैं तो सब वो कोयले की कोठरी में घुस जाते थे अंदर, क्योंकि पहले जो किचन है उसका स्वरूप अलग होता था, आधा बाहर होता और बीच में थोड़ी दीवार छोटी सी पर्दा और पीछे कोयले की कोठरी होती थी, तो सब उधर घुस जाते थे आगे, और दीदी दादी इधर देखते थे क्या हो रहा है इधर। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक बार दादी रत्नमणि जी आए थे तो भाई कुछ बना रहे थे उधर, तो देखा अरे तो कुछ तो तितर बितर हो गए इधर उधर खिसक लिए। एक भाई को पता नहीं चला कि दादी आ गए, तो वो ना कड़ाई साफ कर रहा था, दादी पीछे खड़े, तो बोला दीदी दादी कहते हैं रत्नमणि दादी की क्या कर रहा है तुम? बोला दादी कोई ना कड़ाई ऐसे छोड़ के चल गया झूठी, मैं इसको धुलाई कर रहा हूं, ये नहीं बोला बनाने की तैयारी कर रहा हूं। बोला कोई इसको ऐसे ही छोड़ के चल गया, इसको मैं धुलाई कर रहा हूं। लेकिन दादी दीदियां उनको सबको बोलते हैं हाँ तू बना रहा ना तो मुझे भी देना, मैं भी स्वाद चखूंगी इसका। तो ऐसे दीदी दादी का स्नेह रहता था, उनको देख के सब मना, और एक्यूरेट दिनचर्या। अगर कोई लेट आता था क्लास में और योग में सवेरे दिखाई नहीं दिया तो पूछते थे दीदी कि तबीयत ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है, कुछ चीज तो नहीं चाहिए, तो बातों में उसको शिक्षा भी दे देते थे। कमरे में जाके देखते थे, कमरे कोई सलबटे नहीं है, इनका कमरा साफ है, कपड़े ऐसे तो नहीं पड़े, सॉक्स ऐसे तो नहीं पड़े हुए, तो साफ सफाई स्वच्छता रहना जैसे माँ बच्चे को सिखाती है कितना स्वच्छ रहना होता है, तो दीदी ने बातों पर पूरा ध्यान खिंचवाती थी के कैसे कमरे में रहना है। सामान सेट करने के लिए भाइयों को ब्राह्मणी चाहिए, ऐसे मजाक में कहते थे। एक बार शांताराम भाई के कमरे में भी शायद दादी चंद्रमणि दादी और बड़े दादी आए थे, तो जैसे अलमारी खोली सारे कपड़े धड़ 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 करके नीचे गिर गए। तो वहां शायद ये बोला था। हाँ, एग्जाम्पल देते थे कि अगर देखना है तो दादा बिशर रतन जी को देखो, उनके कमरे में कैसे उनके सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, वो देखने वाली बात थी। हाँ, शत्रुघ्न भाई जी का कमरा भी एक्यूरेट, वो भी स्वच्छता में देखो एकदम पूरा देखते हैं। ऐसे तो होता ही रहता है। ऐसे कुछ दिन पहले, 2-5 महीने पहले दिनकर भाई बैठे थे शांति सम प्रयोग करने शॉल वॉल ओढ़ के, तो बाबराम भाई गए उधर से, सोचा को माता बैठी होगी, तो बोला माता जी पीछे पीछे आके बैठो, तो दिनकर भाई कहता देखो मूछें नहीं दिखाई दे रही तुमको। तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। ऐसे हमारे देवेंद्र भाई है, पहले बनारसी भाई जी के पास सेवा करते थे, तो सेवा करते थे, नए नए आए थे, अभी 2-5 महीने हुए थे, 99 की बात है, तो उनको कहा कि एक यहाँ मिस्त्री होते थे मारुति भाई, शायद आजकल नीचे कहीं गए हुए हैं, तो उनको बनारसी भाई जी ने कहा कि आप मारुति के पास खड़े हो जाओ जाके, वो काम कैसे कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं ये भाई का नाम मारुति है, वो गए और वहां शांति स्तंभ गए, बोला शांति स्तंभ में मारुति के पास खड़े हो जाए, तो वहां देखने जाके मारुति कार तो दिखाई नहीं दे कोई भी, वही चक्कर वक्कर मार के आ रहे हो। तो बाद में पूछा तुम वहां गया क्यों नहीं, बोला भाई साहब वहां मारुति है ही नहीं तो मैं खड़ा कैसे हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, दीदी जी सदा कौन से स्वमान में रहती थी? विशेष दीदी जी सदा कौन से स्वमान में रहती थी? शिव शक्ति और स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है, ये स्वमान में दीदी सदा रहते थे। गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका हूं। दीदी यज्ञ कारोबार को निर्विघ्न चलाने के लिए विशेष कौन सा इशारा देते थे? यज्ञ कारोबार निर्विघ्न चले उसके लिए दीदी जी कौन सा विशेष इशारा देते थे? और उसकी परिपाटी अभी भी लागू है, बीच बीच में चलती रहती है, मौन। विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस शक्ति बढ़ाकर सेवा करना का इशारा देते थे। बीच बीच में मौन रखा जाता था, पहले सोमवार को रखते थे। श्रीमत की वैल्यू दीदी ने कैसे सिखाई? ये दादी जानकी जी के क्लास में से है। श्रीमत की वैल्यू दीदी जी ने कैसे सिखाई, क्योंकि श्रीमत कैसे कितनी महत्वपूर्ण है कितनी महत्वपूर्ण श्रीमत है, तो उसकी वैल्यू दीदी ने कैसे सिखाई? दादी जी ने तो वैसे कहा कि कान पकड़ के दीदी ने सिखाई, मैंने इतना महत्व दिया कि अगर किसी को दीदी जी देख लेते थे कि श्रीमती के अनुकूल नहीं है तो उसको विशेष उसकी क्लास लगाते थे, विशेष सिखाया जाता है कि आप श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हो, तो कान पकड़ के सिखाई, अर्थात श्रीमत सदा सिर माथे पर रही। तो श्रीमत पर चलने के लिए पक्का करने में सबको तत्पर रहती थी दीदी, श्रीमत कहां ढीली ना हो जाए। कौन सी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा और उपराम बन गई? हाँ, दीदी ने कहा छोड़ो बातों को, अब तो घर जाना है। ये स्मृति जो रही, जैसे एक मुरली थी ना, ज्वालामुखी योग के लिए संकल्प है ये, सदा स्मृति के अब वापस घर जाना है। तो ये जो स्मृति है दीदी जी कह रहे हैं कि छोड़ो बातों को, अब तो घर जाना है, इस स्मृति से सदा साक्षी दृष्टा और उपराम बन गई दीदी। दीदी यज्ञ में इकोनॉमी करने का इशारा देते समय क्या कहती थी? लास्ट प्रश्न है ये, दीदी यज्ञ में इकोनॉमी करने का इशारा देते समय क्या कहती थी? एक एक दाना मोहर के समान है, और विशेष क्या इशारा देते थे जो हम सबको भी करना ही है और सब करते भी हैं? कम खर्च बालन सिंह के लिए क्या इशारा देते थे? दीदी कहती थी गरीब गरीब बच्चे, भोली वाली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में बेचती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में बेचती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। हाँ, यज्ञ खर्च के इकोनॉमी के लिए, कहाँ लाइट की जरूरत नहीं है तो बंद कर दो, नल का चल रहा है बंद कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिसमें हम बहुत सारी कमाई जमा कर सकते हैं। ये तो स्थूल रूप से, और सूक्ष्म से भी हमको जो संकल्पों की संपदा है वो भी खर्च नहीं करनी है वेस्ट में, व्यर्थ में। तो ये तो कुछ विशेषताएं थी दीदी जी के, और उनको पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर खुद निकाल सकते हैं, और इनको हम जितना दोहराएंगे मन ही मन, इनको तो हमारे वो नेचुरल हमारे जीवन में आती जाएंगी, तो ही हम सच्चे उनके मन, उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उसका अनुसरण करते हुए उनके दिल पर चढ़ सकते हैं, तो ही हम भी दीदी की उंगली पकड़ के चलेंगे कभी ना कभी फिर। ओके, ओम शांति।